ஓம் சாந்தி. ஞான சரோவர் மே விசேஷ தபஸ்யா கரனே கே லியே அகஸ்த் மாஸ் மே ஆப் சப் பஹுஞ்சே ஹேன். ஔர் யே அகஸ்த் மாஸ் ஹமாரி ஆதரணீய தாதி பிரகாஷ்மணி ஜி கி ஸ்மிருதியோ கா மாஸ் ஹை. 2007 மே ஆஜ் சே 17 வர்ஷ பூர்வ தாதி ஜி நே இஸ் வியக்த தேஹ கா தியாக் கியா. 25 அகஸ்த் 2007 ஆப் சபி ஜின்னோனே தாதி ஜி கோ தேகா ஹை வஹாத் உடாயேங்கே. தேகா ஹை காஃபி ஹை. தீதி மன்மோகினி கோ கிஸ்னே கிஸ்னே தேகா ஹை? தீதி மன்மோகினி கோ தேகா ஹை? வோ பி ஹை 5-7. தீதி மன்மோகினி 1983 மே அவ்யக்த ஹுயி ஜுலாய் மஹினே மே. ஔர் பாபா கே அவ்யக்த ஹோனே கே பாத், மம்மா கே அவ்யக்த ஹோனே கே பாத் தீதி கோ பாபா நே அப்னே சாத் யக்ஞ மே ரக்கா. தீதி மன்மோகினி சப் தேக்னா பீச்சே பிக்சர்ஸ் ஹை சாரே லகே ஹுயே யஹான் பர். தீதி மன்மோகினி 65 மே வோ தில்லி மே பஹலே சேவா கர்த்தி தி கம்லா நகர் மே ரஹ்கர். மம்மா நே 24 ஜூன் 1965 மே சரீர் சோடா. தோ பாபா நே தீதி கோ மம்மா கே ஹி சார்பாய் பர் மம்மா கே ஹி கம்ரே மே ரக்கா, சபக்கி சம்பால் கரேக்கே, யஜ்ஞக்கு அந்தர் கி காரோபார் கோ தேக்கே. லக்கி ஜப் பாபா அவ்யக்த ஹுயே தோ பாபா நே தாதி ஜி கோ ஏக தின் கேலியே ரோக்கா தா. பஹலே வோ பாம்பே மே காம் தேவி மே அப்னி சேவாயே தே ரஹி தி. 16 தாரீக் கோ 16 ஜனவரி கோ பார்ட்டி லேக்கர் கே ஆயி தி. 15-16 கோ ஆயி தி. ஏக தின் பாபா கே சாத் சப் பச்சே மிலே ஔர் பாபா நே கா பச்சி பார்ட்டி கோ வாபஸ் பேஜோ, தும் ருக் ஜாஓ. பஹலி பார் பாபா நே தாதி ஜி கோ ருக்னே கே லியே ஹாங் கியா. நஹீ தோ கேதா பச்சே பாதல் பரே ஹை ஜாஓ பர்சாத் கரோ. லேக்கின் உஸ் தின் போலா ஆப் ருக்கோ பார்ட்டி கோ பேஜ் தோ. ஔர் தீதி ஜோ சாத் ரஹ்தி தி உன்கோ பேஜ் தியா யூபி மே சேவா கே லியே, தும் உதர் சலே ஜாஓ. ஔர் 18 ஜனவரி கோ தாதி கோ சப் குச் ட்ரேனிங் தியா பூரா தின். ஜஹாம் பி மகான் பன் ரஹே தே பாண்டவன் ஆப் ஜாயேங்கே தோ வஹாம் தேக்னா, இந்திரபிரஸ்த பன் ரஹா தா, ட்ரேனிங் சென்டர் பன் ரஹா தா. ஔர் பாபா கே அந்தர் பஹுத் பிளானிங் தி, யே கர்னா யே கர்னா, பஹுத் பச்சே ஆயேங்கே கஹாம் ரஹேங்கே கேசே ரஹேங்கே. தோ பாபா நே சாரா சவேரே சே ராத் தக் தாதி ஜி கோ பூரி ட்ரேனிங் தியா. 18 ஜனவரி கோ சபி பச்சோ கோ பத்ர லிகே, தாதி கோ சாத் பிட்டா கர்கே பத்ரோ கா ஜவாப் பி தியா. ஔர் ஷாம் கோ ஜல்தி கிளாஸ் புலாஓ, தாதி கோ ஹி போலா ஜல்தி கிளாஸ் புலாஓ, பாபா முரளி சுனாயேகா. ஔர் முரளி சுனானே கே பாத் கிளாஸ் மே விதாயி கஹ கர்கே ஔர் தாதி ஜி கே சாத் ஹி கம்ரே மே ஆயே. ஔர் கம்ரே மே தாதி ஜி கே ஹாத் மே ஹாத் தேத்தே ஹுயே கரீப் 9 பஜே ஷாம் கோ புரானே சரீர் கோ சோட் தியா. उस दिन से लेकर के दादी जी ने जो यज्ञ की सेवाएं की, दीदी और दादी की जोड़ी बनी। अव्यक्त बाबा ने दीदी दादी के सिर पर कलश रखा। 21 जनवरी को बाबा आए गुलजार दादी के तन में, और 21 जनवरी 69 को दीदी दादी को इस विश्वविद्यालय का कार्य सौंप दिया। लेकिन उस दिन से लेकर के 2007 तक दादी जी ने जो सेवाएं की, दीदी जी के साथ जो मिलकर सेवाएं की, एक बहुत बड़ा इतिहास है। और वो इतिहास मुझे आत्मा को आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। मैं 71 में आ गया, 72 में समर्पित हुआ। दीदी दादी के साथ लिखना पढ़ना, कारोबार में सहयोगी बनना, क्योंकि यहाँ ही मैंने सिंधी सीखी, टाइप सीखी, और दीदी को जो पत्रों में सहयोग चाहिए लिखने में, वो मैं मदद करता था। लेकिन जब दीदी अव्यक्त हुई 83 में, तो दीदी के अव्यक्त होने के बाद दादी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारियां आ गई, क्योंकि जानकी दादी जी को सह मुख्य प्रशासिका बनाया बाबा ने। उनको कहा कि तुम्हें तो लंदन में ही रहना है, विदेश की सेवा संभालनी है, और दादी जी के साथ हमारी चंद्रमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, शांतामणि दादी, इन दादियों को कहा कि आप इनके साथ मदद करना। लेकिन जब दीदी के अव्यक्त होने के बाद सबसे बड़ी जवाबदारी जो थी पत्रों की, बहुत सारी पोस्ट आती थी, सबका जवाब दीदी लिखती थी, तो एक दिन मुझे बुलाया, कहती है देख, दीदी ने सबके जवाब बाबा के बाद दिए और अभी दादी अकेले हो गई। दूसरी दादियां हैं लेकिन उनको सेंटर्स के विषय में, भाई बहनों के विषय में इतना पता नहीं होता, इसलिए तुम तो सब देख रहे हो, इतने दिन से दीदी के साथ सीखे हो, इन पत्रों का जवाब तुम्हें देना है। तो वो दिन मुझे याद आते हैं, पांडव भवन में जो दरवाजा है, मेन गेट है ऑफिस का दरवाजा, उसके आगे ईशु दादी और बड़ी दादी प्रकाशमय दादी बैठी थी, और मुझे बुलाया और कहा बैठो इधर, कुर्सी बीच में डाल दिया, एक तरफ ईशु दादी एक तरफ दादी, और कहने लगी देख इतनी पोस्ट आती है, ईशु दादी भी नहीं पढ़ पाती, दादी के पास भी टाइम नहीं रहता, तुम्हें ये सेवा करनी है जी दादी। और वो सारी पोस्ट इतना थैला भर करके मेरे को दे दिया। मुझे इस विषय में इतना पता नहीं था, मैंने सोचा था ऐसे पत्र होते हैं लिख देंगे, लेकिन कई बातें सेंटर्स की, बहनों की स्थिति की, हलचल की, विघ्नों की भी होती हैं। तो पढ़ा तो मैंने, लेकिन मैं मूंझ गया, हमने कहा इसका उत्तर मैं क्या दूंगा। तो दादी को पता था कि अभी तो इसको हमने आज कहा है, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो दादी कमरे में गई, थोड़ा देर लेटी होगी, और 4 बजे सीधा ही कहा राजू को बुलाओ। मैं गया दादी के पास, तुमने पत्र पढ़े, 10 बजे पोस्ट दिया है, सुबह सारी पोस्ट उठा के दे दिया, तुमने पत्र पढ़े? मैं कहा दादी कुछ पढ़े हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्या इनका जवाब है। तो बैठो इधर, बैठो इधर। दादी का जो बैलेंस था तपस्या और सेवा का, बहुत बड़ा बैलेंस था। बाबा के साथ जो कनेक्शन है, बुद्धि की तार है, तपस्या क्या है हमारी? तपस्या तो हम कोई आसन लगा के तो बैठ नहीं जाते हैं, तपस्या कोई हम सेवाओं को छोड़ करके तो नहीं कर रहे हैं। तपस्या का एक अर्थ बाबा ने सुनाया है, तपस्या माना जिसकी लगन एक बाबा से सदा लगी हुई हो, एक बाबा दूसरा न कोई। ये हमारे ब्राह्मणों की तपस्या है। कहीं पर भी बुद्धि इधर उधर किसी भी देहधारी में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अगर बुद्धि नहीं भटक रही है तो वो सच्ची तपस्या है। और भी बाबा ने इसकी गहराई बताई है, जितना आप बच्चे आत्मिक स्थिति में रहते हो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना ही तपस्या है। देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या बाबा ने सिखाई है। त्याग हमने कोई साधनों का, वस्तुओं का, घर बार का, परिवार का नहीं किया है, लेकिन हम सबको बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। जहां मैंपन आता है, जहां मेरापन आता है, उस मैं और मेरेपन के अभिमान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और जब ये त्याग हम कर देते हैं तो हमारी तपस्या शुरू हो जाती है आत्म अभिमानी स्थिति की। तो दादी जी ने वो तपस्या की जो बिल्कुल आत्म अभिमानी स्थिति क्या होती है प्रैक्टिकल देखने को मिलता था। जैसे भ्रकुटी के बीच में सदा सितारा चमक रहा है, कोई भी कर्म इंद्रियों का खिंचाव नहीं है, अभिमान नहीं है, ऐसी आत्मअभिमानी बनने की तपस्या होने के कारण और बाबा से एक बहुत स्नेह का संबंध होने के कारण यथार्थ टचिंग आनी चाहिए बाबा की, और उस टचिंग के आधार से जो सेवा जो कार्य आया उसको बहुत सरल रीति से करके दिखाया। तो हम बैठ जाते थे, करीब 4 बजे बैठते थे एक ही सोफे पर हम दोनों। मोहिनी बहन को दादी कहती तुम सो जाओ, हमारा काम है, हम धीरे धीरे करेंगे, तुम डिस्टर्ब नहीं होना। एक ही कमरा था। 1-1.5 घंटे में दादी सारे पत्र लिखा देती थी, आंख बंद कर लेती ऐसे, चाय थोड़ी कभी रखी होती पी लेती, और हम दोनों दादी बोलती जाती इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो। बिल्कुल क्लीन बुद्धि, जैसे बाबा की टचिंग आ रही है और लिखा रही है। 5-7 लाइन हर एक को, 5-5, 10-10 लाइन लिखाई और फिर कहा इसको तुम अच्छी तरह से ठीक करके लिख दो, जा करके जवाब दे दो। इतनी स्वच्छ क्लीन बुद्धि, किसी के प्रति भी कोई गलत भावनाएं नहीं है, शुभ भावनाएं, सदा कल्याण की भावना है। सब कुछ होगा क्योंकि परिवार वैरायटी संस्कार हैं, अलग अलग प्रकार के हिसाब किताब हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें तो होती ही हैं। उन बातों को न देख करके बाबा क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना और उस पर ध्यान खिंचवाना, ये दादी जी का बहुत अंदर से रहता था। इसलिए किसी के भी गुणों और अवगुणों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, समय अनुसार दादी केवल उस पर हम सबका ध्यान खिंचवाती थी। पत्रों में भी वही लिखवाती है कि ऐसे ऐसी बात, इसको लिखो, इसको। तो मैंने देखा कि जो बाबा हम सबको तपस्या शब्द कहते हैं, उस तपस्या में 3 मुख्य बातें हैं जो दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देती थी। एक है संकल्पों में दृढ़ता। भाई मोबाइल आप बंद कर दो, अभी टाइम नहीं हुआ है। कौन बजा रहा है मोबाइल? गीत बज रहा है ना किसी का, साइलेंस कर दो, क्यों गीत बजेगा अपने आप यहां पर 10:30 का। पहला है तपस्या का वास्तविक अर्थ दृढ़ता संपन्न संकल्प, जो संकल्प है उसमें इतनी दृढ़ता थी कि उनके कोई भी संकल्प सिद्ध होते थे, पीछे नहीं हटती थी। संकल्प ले लिया, करना है तो हो जाता था। जैसे हठ योगी तपस्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, आसन लगा लेते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कोई पानी में खड़े हो जाते हैं, भाई तपस्या कर रहा है, वो हठ है, क्रियाएं हैं, हठ क्रियाएं हैं। और तब तक खड़े रहते, तब तक तपस्या में बैठ जाते जब तक उनको भगवान से कुछ वरदान नहीं मिल जाता। जितने लोगों ने, चाहे असुर थे चाहे देवता हैं, जिन्होंने भी तपस्या की, कहानियों में हम सब पढ़ते हैं, वाल्मीकि ने तपस्या की, एक अश्व से वो एक संत बन गया, ऋषि बन गया। कैसे तपस्या की? जब उसको महसूसता हुई कि ये रॉन्ग कर्म है, गलत कर्म है, इसको मुझे चेंज करना है, अपने संस्कारों को चेंज करना है, तो उसने आसन लगा लिया, सब कुछ त्याग करके बैठ गया। और बैठने के बाद न पानी न खाना, एकदम तपस्या में लीन हो गया। तो बताते हैं जो दीमक होती ना, दीमक ने छोटे छोटे घर उसके सारे शरीर पर बना दिए, बॉल जैसे छोटे छोटे। भगवान उस पर प्रसन्न हुए और कहा है, वरदान मांग ले, किस लिए तपस्या इतनी कर रहा है। कहते उस पर भगवान ने प्रसन्न होकर उसको वाल्मीकि का नाम टाइटल दे दिया। तपस्या से उसने सिद्धि प्राप्त की, उसकी बुद्धि इतनी विशाल बन गई जो उसने सुंदर रामायण की रचना कर दी। ऐसी तपस्वी आत्माएं, दृढ़ता है उसके अंदर है संकल्पों में, कुछ भी हो जाए संकल्प लिया है, सहन करेंगे, सामना करेंगे, हर परिस्थिति को पार करेंगे, और उसको सिद्धि तब तक, जब तक नहीं मिली तब तक उस तपस्या से हिला नहीं। बाबा ने हम सबको सहजयोगी बनाया है, हम तपस्वी हैं लेकिन हम कोई हठ क्रियाएं नहीं करते। तो हम देखते थे दादी जी के अंदर इतने संकल्प में दृढ़ता थी, जो कुछ बाबा ने कहा है वो मुझे करना है। साकार में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उसको प्रैक्टिकल धरातल पर लाना है। कैसे लाना है उसकी प्लानिंग करो, लेकिन लाना है। विदेश में सेवाएं शुरू कराई, बाबा कहते थे बच्चे तुम्हारे हर देश में केंद्र खुलेंगे, हर धर्म वालों को ज्ञान मिलेगा। दादी जी ने प्लानिंग की, 69 में तो जवाबदारी आई, 70 में प्लानिंग की और 71 में पहला ग्रुप भेज दिया लंदन। लंदन में एक ही माता थी जो अभी जयंती दीदी हैं, उनकी लौकिक माँ रजनी माता, वो वहीं पर परिवार में रहती थी। और उन्होंने ही निमंत्रण दिया था कि दादी अभी विदेश की सेवा शुरू करो, किसी को भेजो, अपने घर में ही बुलाया था। 72 में ही हमारी दादी रतन मोहिनी जी लंदन में सेवा पर गई, 2 साल वहां रही। और 74 में दादी जानकी को दादियों ने भेजा कि आप जाओ भी वहां। सारे विश्व की सेवाएं एक ढक से 72 में शुरू हो गई, लंदन के साथ अमेरिका, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह बाबा ने, दादियों ने बहनों को भेज दिया, भाई बहनों को, सेंटर खुलने लगे, वृद्धि हुई, विस्तार हुई। 77 में दादी ने वर्ल्ड टूर किया, 77 में रमेश भाई और दादी जी पूरे जहां जहां सेंटर थे वहां चक्कर लगाने निकले। चक्कर लगा के आई, संकल्प की सिद्धियां, दृढ़ता संपन्न संकल्प जिसको हम तपस्या कहते हैं, ऐसी तपस्वी आत्मा जो संकल्प कह ले होना है, करना है, पीछे नहीं हटी। विदेश से आई 77 में पूरा वर्ल्ड टूर करके, कहती है इतने विश्व में बाबा के बच्चे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बनाना है। ट्रैफिक कंट्रोल, जो अभी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ ना, वो दिन मुझे याद है, 10:30 बजे का पहला गीत बजा था 77 में दादी के आने के बाद विदेश से। और कहती है कम से कम 5 बार हम सबको 3-3 मिनट की ट्रैफिक कंट्रोल करना है, संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल। कहां से सीख के आई? विदेश से जाके संकल्प लेके आई। कितने लोग एक्यूरेट हैं, ट्रैफिक माना रुक जाना है। इंडिया की कभी कभी तो ट्रैफिक क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन विदेश में से आई कहती इतने सब बाबा के बच्चे हैं, सबको सकाश देनी है, सब ट्रैफिक कंट्रोल करो। 10:30, 12:30, पहले 12:30 था, अभी 12 है, फिर 5:30, फिर 7:30, फिर 9:30, ऐसे करके 5 बार ट्रैफिक, 7 बजे ही बजता है, 5-6 बार ट्रैफिक कंट्रोल 77 में शुरू करा दिया। अभी भी चल रहा है वो, ये दादी जी की देन थी। फिर कहती है कि सारे विश्व में अगर सभी ब्राह्मण बच्चे एक साथ योग करें तो कितनी बड़ी सकास, कितना बड़ा एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो दादी जी ने एक नियम बनाया कि सभी सेंटर्स पर सभी देश विदेश के बच्चे 5:30 से 6:30 योग करेंगे। कुछ समय तो चला, जैसे यहां कहा गया। अब भारत का टाइम और उनके टाइम में बहुत बड़ा अंतर था। शुरू तो कराया साथ में ही, अब रात को कोई 1 बजा है, कोई 12 बजा है, कोई अमेरिका का टाइम अलग, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग, हर जगह का टाइमिंग फिक्स। तो लोगों को आया कि दादी जी ने कहा है ये करेंगे हम जरूर, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है, नींद फिटती है, फिर कारोबार में दिक्कत आती है, इसलिए फिर इसको चेंज कराया कि नहीं, सभी अपने अपने स्थानों पर अपनी दिनचर्या को साथ में रखते हुए 6:30 से 7:30 शाम का कंपल्सरी 3rd Sunday योग होना चाहिए। सुने माताएं, नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा कोई कोई ऐसे गर्दन करके बैठी हैं, आप लोग नींद करोगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। थोड़ा अलर्ट होके बैठो सभी, इधर तो सब अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, वो कोने में ऐसे बैठे हैं। 6:30 से 7:30 का 3rd Sunday का योग शुरू कराया। ये क्यों मैं बता रहा हूं? एक आत्मा के संकल्पों में इतनी शक्ति थी, इतनी दृढ़ता थी, यही तपस्या है। संकल्प कर लिया, करना है तो होना है। फिर एक बार दूसरी बार चक्कर लगाने गई विदेश, वहां से वापस आके कहती है क्यों नहीं हम 1 घंटे में 1 मिनट का योग शुरू करें। वो भी मधुबन में शुरू करा दिया, हर घंटे 1 मिनट का रिकॉर्ड बजाओ, ट्यून बजाओ, और सब लोग जहां हैं वहां कारोबार रोक करके योग करें। जो संकल्प आते गए ब्राह्मणों की उन्नति के लिए, संकल्प उठा और प्रैक्टिकल किया। दीदी बहुत साथ देती थी, दीदी दादी की ऐसी जोड़ी थी जिसको हम कहते थे शरीर 2 है आत्मा 1 है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन विचारों में संस्कारों में मिलन ऐसा था कि उधर से अगर कोई बात कही गई है तो उधर वाले को पता है, माना कोई कट नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं हमारी कोई बात हुई दीदी से और दीदी ने उसके लिए मना कर दिया और हम जाके दादी से मना के आए, दीदी ने कहा है ना, जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है, वो हटे नहीं गिरे। इतनी अंदर से दोनों के संस्कार, दोनों के विचार भिन्न हैं, भिन्नताएं बहुत हैं। ये भिन्नताएं अगर मैं सुनाऊं तो अनेक प्रकार की भिन्नताएं थी। दीदी जी बेगरी पार्ट से ही क्रॉस हुई थी, बाबा के साथ रही, देखा यज्ञ के अंदर और हरेक के अंदर कैसे संभालना है यज्ञ को, एक एक पैसे की बचत करनी है, दीदी के रग रग में यज्ञ का एक एक पैसा सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। इकोनॉमी करना है, बहुत बचत करनी है। और दादी के संस्कारों में बॉम्बे में रही थी, सेवा कर रही थी, फ्राक दिली भी बहुत थी। एक बार क्या हुआ, जब पहली बार विदेश से आई तो 77 में आने की बात कहती है, मुझे मधुबन निवासियों को दीदी एक बार टेरी काट की ड्रेस देनी है, सौगात देनी है। उस समय तक हम लोग वो एक लट्ठा आता है मजबूत मोटा कपड़ा, पापलिन या लट्ठा, दो ही चीजें होती थी हम लोगों के कुर्ते पजामे के लिए। तो दीदी कहती है 77 में, दादी जी कहती हैं, दादी मेरी दिल है इन भाइयों को विशेष टेरी काट की ड्रेस दें, बहनों को एक अच्छी साड़ी दें और भाइयों को ड्रेस दें। दीदी ऐसे बोलती, क्या दादी क्या हो गया आपको, टेरी काट की ड्रेस क्यों? दादी कहती है, मैं विदेश से होके आई हूं, कुछ तो सौगात इनको देनी चाहिए ना दादी। दीदी, अरे ये सब टेरी काट के ड्रेस पहन के घूमेंगे, देवमान आएगा, ये काम कैसे करेंगे, झाड़ू पोछा कैसे करेंगे, धोबी घाट कैसे करेंगे, ये तो सब स्थूल काम करने वाले हैं, ड्रेस पहन के कहाँ घूमेंगे। दादी की दिल, दीदी अच्छा आपकी दिल है तो भले दे दो, लेकिन कुर्ता टेरी काट के दे दो, पजामा सूती दे दो। दीदी ने राय दिया, दीदी कहे तो दादी हाँ कर ली, ठीक है दादी। अब भाइयों के हाथ में गई तो आपस में चेंज कर लिया, अलग बात है, बना लिया अपना। मैं कहना यह चाहता हूं कि भले संस्कार भिन्न थे, लेकिन उन संस्कारों को मिलाया। ऐसे नहीं ऐसा दीदी क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं, ठीक है जो आका। जी हाँ, आज दो बहनें आपस में एक साथ नहीं रह सकती हैं, दो परिवार के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, टकराव पैदा हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज इतना जो यज्ञ का विस्तार देख रहे हो, उस विस्तार के पीछे संस्कार मिलन की रास है। अपने से लोगों को आगे किया, कभी ये नहीं सोचा कि इनका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, बड़ी मैं हूं। आज क्या है, टकराव की स्थिति का कारण क्या है, कोई स्टूडेंट को कोई बहन समझा के आए और बड़ी बहन के आगे कुछ वर्णन करे कि बहन ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, तो जो आजू बाजू वाले उजल जाते, ईर्ष्या होती, ये कौन से ज्ञान, इसके पास क्या ज्ञान है। वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब विघ्नों का मूल कारण। और दादी के सामने अगर कोई स्टूडेंट ने किसी बहन की किसी भाई की महिमा की, वाह वाह क्या बाबा के बच्चे हैं, कितना कमाल करते हैं, कैसे इनकी सेवा करते हैं, और महिमा करके उसके उमंग उत्साह को बढ़ा दिया, प्रोत्साहित कर दिया, इसकी महिमा बाबा की महिमा, इसकी महिमा दादी की महिमा, इतना फ्राक दिल, इतनी बड़ी दिल, जिस बड़ी दिल के कारण संगठन को एक करके चलाया। अपने से बड़ी बहनें, आप समझ सकते हो, दीदी दादी तो लौकिक में बाबा का संबंध नहीं था, लौकिक तो नहीं थी, अलौकिक ही थी, और लौकिक वाले बड़े हैं, ऐसे नहीं छोटे बैठे हैं कोई। बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी परदादी कहलाती है यज्ञ में, बाबा की लौकिक बहू ब्रजिंद्रा दादी वो महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज, बाबा ने कोई उनको हेड नहीं बना दिया, परिवारवाद नहीं हुआ, उनको हेड नहीं बनाया संस्था का, और हेड बनाया दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि को। लेकिन इन दोनों दादियों ने इतना नम्रता के साथ, इतना सरलता के साथ, इतना मधुरता के साथ सबको सहयोगी बनाया, साथी बनाया, और ये नहीं कहा कि मैं बड़ी हूं, नहीं, तुम बड़े हो, तुम आगे हो, तुम आगे हो, तुम आगे हो, सबको सम्मान दिया। दो बातें हैं जो संस्कार मिलन की रास किया, मैंने दो बातें नोट की है। एक, हरेक की बात को स्वीकार किया, कभी कट नहीं किया। अगर मान लो गलत भी है, इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना, समझने की कोशिश करना, सामने वाला गलत है और अपनी बात फोर्स से कह रहा है कि ये राइट है, यही होना चाहिए, और बड़े समझ रहे हैं इससे नुकसान है, ठीक नहीं है, फिर भी उस बात को कट नहीं किया, ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, इस पर हम आपस में राय करेंगे, इससे उस व्यक्ति का जो सम्मान है वो सम्मान घटा नहीं, उसको ये नहीं लगा मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मैं इतना अनुभवी हूं, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं, मुझे पता है ऐसे हो जाएगा, लेकिन ठीक है उसने कही है, लेकिन लगता है श्रीमत अनुसार ठीक नहीं है, तो भी उसकी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उसको सत्कार दिया, ठीक है आपकी राय बड़ी अच्छी है, आपने जो कहा है वो बहुत विचार करने वाली बात है, हम आपस में विचार करके फिर बताएंगे। इससे क्या है, उसका उस समय का जो लेवल है, पारा है, वो शांत हो गया। फिर समय पर उसको बुला करके बताया, देखो ये करने से ये नुकसान हो सकता है, ये बाबा की श्रीमत ऐसी है, तुम्हारी राय बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके द्वारा ये घटना हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इससे ये गलतियां हो सकती हैं। समझाया उसको, बात दी उसको, लेकिन तुरंत कट नहीं किया, इसलिए सारे संगठन को एक करके चलाया। हम परिवार में क्या करते हैं, मान लो कोई अच्छा अनुभवी है, बात देता है, हमारे पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते, हम उसको कट कर देते हैं, और कट करने के कारण वो हमसे दूर हो जाता है, दूसरी बार अपनी राय नहीं देता, दूसरी बात कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रखता, हमारी क्या वैल्यू है, हमको कौन समझता है। हमारी दादी ने इस बात को कितना अंदर से समाया होगा, इतने बड़े परिवार की कितनी बातें आती होंगी उनके सामने, उन सभी बातों को स्वीकार करके उनको सत्कार देना, उनको सम्मान दे करके आगे बढ़ाना, उनको सहयोगी बना करके रखना, उनको संगठन से टूटने नहीं देना, ये बहुत बड़ी कला है, और उसके आधार से यज्ञ आज हमारा इतना आगे बढ़ा है, इतना निर्विघ्न बना है। कई लोगों का एक दृष्टिकोण होता है किसी न किसी की कमी को देखना, कमियों पर बहुत ध्यान जाता है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, और बाबा क्या कहता है, कभी भी बाबा ने किसी बच्चे की कमियों को देखा ही नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मुझे बाबा कहा है, इसके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है, और उस एक विशेषता को लेकर के बाबा ने उसको सेवा में लगा दिया। एक ही विशेषता हम लोगों में क्या थी भाई, सिर्फ बड़ों ने कहा है हमके हाँ जी करना है, आता या नहीं आता हाँ जी कर, हाँ जी कह लेंगे, उनकी दुआएं मिल गई, उनका आशीर्वाद मिल गया, और सिखाने के लिए अगर नहीं हम जानते हैं, जानती हैं वो, दूसरे को मदद दे दी, सहयोग दे दिया, साथ दे दिया, सीख के करते करते, कोई ऊपर से सीख के थोड़ी आए थे, लेकिन एक दूसरे को सम्मान दे करके, एक दूसरे की बात को स्वीकार करके, कोई ने कोई बात कही है उसको सत्कार दे करके, अगर हम अपनी कोई एक विशेषता को सेवा में लगा देते हैं और किसी की इस विशेषता को हम कार्य में यज्ञ में लगाते हैं, तो वो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है और उसकी कमियां अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसे यज्ञ बढ़ा है, ऐसे यज्ञ को चलाया है। दादी जी की अनेकानेक विशेषताएं, ओम शांति भवन बनवाया पहले पहले, मैं आपको दो तीन भवनों की बात सुनाता हूं। तपस्या का बहुत जबरदस्त बैलेंस था, कहीं तपस्या को पीछे नहीं किया। आज सेवा में लग जाते हैं, योग टूट जाता है, क्या करें, योग का टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। कभी भी कोई बात आई, सबको नहीं कहती थी, कुछ भाइयों को बुलाती थी, दादी कहती थी देखो बातें बहुत आ रही हैं, आज हम सभी 2 बजे उठ के योग करेंगे। 15-20 भाई बहनों को ऐसे, हम छोटा परिवार था हमारा, तो मधुबन में थे ही 50 लोग। उसमें जो इंटरेस्टेड होते थे, दादी कहती थी आप लोग आज जल्दी सो जाओ, सुबह 2 बजे उठ के हम सभी योग करेंगे। कितनी बार 2 बजे तपस्या कराई, खुद आके बैठना, कुर्सियां नहीं हैं, सोफे नहीं हैं, सामने गद्दी डाल के बैठ करके सबको दृष्टि देना, सबको कमेंट्री देना, किसी भी विघ्न का वर्णन नहीं करना। आप ये बात नोट करके जाना, कोई भी समस्या आती है अगर हम उसको वर्णन करते हैं, उस पर हम विचार करने लगते हैं, तो समस्या और बड़ी हो जाती है। बाबा साथ है, ठीक हो जाएगा। केवल एक ही बल हमको बाबा ने दिया है, वो है योग बल, तपस्या का बल। कभी भी कोई बातें हैं, चलो आज योग करेंगे, आज 2 बजे योग करेंगे, हर नमाज शाम को विशेष योग करेंगे, और उस योग से उस विघ्न को खत्म कर दिया, हल्का कर दिया। जब ओम शांति भवन बनना था, ओम शांति भवन कैसे बना, एक भाई थे जयपुर के, उनको लगता था कि पांडव भवन में 8 बजे के बाद बाहर निकलने की मना थी शाम को, क्योंकि बाहर जंगल था और जंगल में कभी चीता, कभी रीछ, भालू ऐसे सामने आ जाते, कभी भी कोई पर अटैक कर दे। लाइट भी नहीं थी इतनी, रोड पर लाइट नहीं थी। तो एक भाई ऐसे आया, पहाड़ी देखी, ये चट्टाने हैं, और उसने जा करके जिसकी वो जमीन थी उससे बात करके वो खरीद लिया, ले लिया एक भाई ने। और लेने के बाद दादी के पास कागज सारे ले आया कि दादी ये स्थान बाहर का, ये ओम शांति भवन पहाड़ियां थी छोटी छोटी, ये मैंने ले लिया है। क्यों लिया भाई? दादी यहाँ पर कुछ बना लूंगा, यहाँ बन जाएगा, लाइट लग जाएगी, तो ये जो जंगल से जानवर आते नहीं आएंगे, हमारी सबकी सेफ्टी है। दादी कहती है दादी तो भाई जमीन तो लेके दिया, बनाएगा कौन? दादी हम सब मिलके बनाएंगे, आप शुरू कराओ, काम शुरू करो। अब काम शुरू कराने में इतने विघ्न, पहाड़ी नहीं तोड़नी, ये नहीं करना, अगर उस समय वो तोड़ने की छुट्टी देते ना, तो जो आज ताज जैसा बना ना ओम शांति भवन, वो लेवल में आ जाता। तोड़ने नहीं दिया उसने उस समय, और 3 फ्लोर एक तरफ बन गए, एक अंडरग्राउंड बन गया, बीच में बाबा कमरा, लाइब्रेरी बन गई, उसके ऊपर हाल बना, जितना तोड़ सके, जितना हम लोग अंदर अंदर कर सके, और सब मधुबन वाले करेंगे, बाहर वाला एक मिस्त्री नहीं, एक मजदूर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, पैसा ही नहीं। और दादी का इतना उमंग उत्साह कि चलो हम सब चाय वहीं पियेंगे, टोली वहीं खाएंगे, क्लास वहीं होगा, कोई क्लास नहीं, सुबह मुरली सुनो और लग जाओ सेवा में, पार्टी आए या कोई भी आए, सबको कार्ड सेवा करनी है। कैसे करनी है? अब पत्थर तोड़ने की तो आदत नहीं है सबको, 1-2 पत्थर तोड़ते थे, और हम लोग अगर हथौड़ी उठा लेते थे तो क्या होता था, इधर का पत्थर उछल के उधर गिरता था। हम लोगों को सबको, मैं समझता हूँ जितनों ने वहां सेवा की है, सबने ब्लड दिया, ब्लड खून दिया। पत्थर उड़ता था, हमारे को भी यहां एक बार लगा, चार टांके आए थे। डॉक्टर कहता भाग्यवान हो आंख बच गई। पत्थर तोड़ने की आदत नहीं, लेकिन दादी खुद खड़ी होती थी, इधर से उठाओ इधर से उठाओ इधर, लाइन लगवा देती थी, सारे पत्थर साफ हो जाते थे। कोई तोड़ रहा है, कोई उठा रहा है, कोई पकड़ा रहा है। क्या हिम्मत थी, क्या उमंग उत्साह था। एक डेढ़ साल में इतना बड़ा भवन बना दिया। पूछा कितना खर्चा किया है, खर्चा पैसा तो था ही नहीं। उद्घाटन में पूरे आबू को बुक करना है, पूरा आबू, एक भी होटल, एक भी चारपाई बाहर वाले को नहीं मिलेगी, केवल ब्रह्मा कुमारी, पूरा माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी का। ये नहीं सोचा पैसा कहां से आएगा, होटल वालों का कितना खर्चा होगा, क्या किराया होगा, कुछ भी हो सब बुक कर दो। हम सब की ड्यूटी लगा दी मधुबन वालों की, सब वहां के बिस्तर साफ करो, वहां गर्म पानी का प्रबंध करो, वहां ये करो, वहां सब लग गए जाके मधुबन के भाई। सारे होटल, सारे मंदिर, सारी धर्मशालाएं बुक करवा दी। कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस में 3000 लोग आए, पूरा हाल छोटा पड़ गया। धूमधाम से सेवाएं हुई, ऐसे लगा अभी बाबा प्रत्यक्ष हो गया। उद्घाटन के बाद दादी कहती तुम सबका हिसाब करके आओ, सब जाओ भाई लोग, हिसाब करके आए जो भी खर्चा हुआ। दादी कहती है जो बूढ़ा बाबा है ना, ये बूढ़ा बाबा ऐसे बोलती है, ये बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर है। दादी क्या चतुराई किया, कहती है भंडारी में जितना आया ना उतना ही भंडारी में आया, जितना तुमने खर्चा किया उतना आया, एक रुपया कम नहीं है, एक रुपया ज्यादा नहीं है, जितना तुम पेमेंट करके आया उतना ही भंडारी में आया। वो हिम्मत, वो उमंग, उत्साह, इतना नशा कराने वाला बाबा है, काम उसका है, ये तपस्या है। बाबा का यज्ञ है, बाबा का घर है, बाबा कराने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। ये वास्तव में सच्ची तपस्या इसको कहा जाता है। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी को नहीं कहा तुम मदद करो ये बन रहा है मकान, आते गए बनता गया और इतना सुंदर ओम शांति भवन बन गया। ओम शांति भवन छोटा पड़ने लगा, विचार किया गया कोई स्थान लिया जाए। दादी को बार बार संकल्प आए स्थान छोटा पड़ गया है, कहीं अच्छा स्थान मिलना चाहिए। एक कहानी छोटी सुना करके पूरा। एक सन्यासी थे आबू में और उनकी उम्र उस समय भी 104 साल थी, वो 109 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, बहुत पक्का मजबूत था, गौमुख में रहता था। उसको जब भी कोई तकलीफ होती दादी को डायरेक्ट फोन करता, दादी मुझे ठंडी लगती है, मुझे कंबल भेज दो, मुझे ये कर दो। तो दादी को भी सन्यासियों से बहुत स्नेह था, चारों तरफ के सन्यासियों के पास कभी फल भेजना, कभी कोई सौगात भेज देना, कभी कंबल भेज देना। तो वो कहता है आज दादी मुझे बहुत पेन है, बहुत दर्द है, मुझे डॉक्टर भेज दो। एक ही डॉक्टर हमारे पास था, उसको कहा जाओ भाई देख के आओ क्या बाबा को हुआ है तकलीफ। तो गए, उसको हार्निया की तकलीफ थी, बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा था, चिल्ला रहा था। तो भाई ने कहा कि बाबा जी यहां तो कुछ नहीं होगा, अपना हॉस्पिटल तो है नहीं, चलो हम अहमदाबाद में ले चलते हैं, आपका ऑपरेशन करवाते। वो बाबा जी को अहमदाबाद ले गया, वो डरे कि इतनी उम्र है ऑपरेशन कौन करेगा इतनी उम्र में, 103-4 साल का। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के तो ठीक नहीं होगा, बाहर निकल गई है आते। तो वो डरे कि अभी क्या होगा। तो जब उसको ले जाने लगे तो ब्रह्मा बाबा का उसको साक्षात्कार हो गया। ब्रह्मा बाबा के ऐसे खड़े हो गए, सिर पर हाथ रखा, बच्चे तुम डरना नहीं, मैं ऑपरेशन करूंगा, डॉक्टर तो निमित्त है। उसको इतने अच्छे अनुभव हुए, ऑपरेशन हुआ उसको पता भी नहीं चला, ठीक हो गया। और ठीक होकर के यहाँ आ गया आबू में। आने के बाद कहता है ये हमारी 35-36 एकड़ जमीन है, ये कागज है, ये आप सब लो और यहाँ पर आप अपना आश्रम बना लो। भाई लोग बड़े खुश हो गए, भाई बड़े खुश हो गए जैसे अभी ताली बजा रहे हो। ले आए कागज, दादी को दिया, दादी ऐसे ऐसे है, उस सन्यासी ने बड़ी भावना से कहा है, आप ले लो ये सब। दादी कहती लेना तो ठीक है, जरूरत तो है, लेकिन बिना बाबा के पूछे तो हम नहीं लेते, बाबा से पूछते हैं। तो हिस्ट्री हाल में बाबा को बुलाया, हिस्ट्री हाल है ना पांडव भवन में, नीचे गद्दी लगाई और गुलजार दादी को बुलाया, बिठाया कि जाओ बाबा को बुला के ले आओ। और बाबा आए, आकर के बाबा के आगे भाइयों ने कागज रखे ऐसे। बाबा पहले थोड़ी मुरली चलाई, प्यार से दृष्टि दी और फिर बोले, बच्चे ये जो कागज है ना, ये सवेरे वापस कर देना। बाबा आपने उसको अनुभव कराया है, आपके प्यार में तो दे रहा है, आप क्यों कहते हो वापस कर देना। फिर बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, कहता बाप को किसी सन्यासी की जमीन नहीं चाहिए, वापस करो, कागज वापस करके आओ। क्या करे, बाबा ने बोल दिया, सवेरे गए भाई लोग, क्यों डरते हो, हम तो दे रहे हैं ना, ले लो आप ले लो। नहीं, बाबा ने मना किया। उसने समझा क्यों डर गए होंगे, कुछ कारण होगा, लेकिन कागज वापस करके आ गए। अब वापस करके आ गए, वो तो फिर बात की कहानी में बाद में सुनाऊ नहीं है, लेकिन बेचारा चुप हो गया। उसके बाद 8-9 साल की उम्र, 108 साल की उम्र में शायद उसने सरे छोड़ा। लेकिन बाबा एक दिन आए, अव्यक्त बाबा, ओम शांति भवन में, सुबह 6 बजा था वो 10, क्योंकि मैं बाबा के सामने बैठता था हमेशा, तो सुबह 6 बजे दादी ने विदाई दिया और बाबा ने ऐसे आंख बंद किया और थोड़ी देर के बाद फिर आ गए वापस, 2-3 मिनट में ही गए और वापस आके दादी को कहते इधर आओ, और ऐसे कान में बोलते हैं कि ये जो दूध वाले आते हैं ना, इनके पास जमीन है, इनसे बात करना, ऐसे इशारे में बोल दिया और बाबा फिर चला गया। 9 बजे दूध वाले यहां से सालगांव से दूध लेकर के जाते थे, तो दूध लेकर के आए और कहते हैं भाई जी, वल्लभ भाई हमारे थे, वो दूध देते लेते थे दूध उनसे, उनको बोलते हैं भाई जी हमारी एक जमीन है, आप लेंगे क्या, आपको जरूरत है तो है, जमीन ले लो आप लोग, पड़ी है हमारी 35 एकड़ के लगभग, 33 एकड़। वो भाग के गया दादी के पास, भाई दादी ये दूध वाले आए हैं, कहते हमारी जमीन है, आप लेंगे क्या। तो दादी कहती सवेरे तो बाबा बोल के गया था 6 बजे, और ये 9 बजे ये आ गया व्यक्ति, बोला बुलाओ उसको। बुलाया उसको, बोलता दादी हमारे सब भाई बहनों का विचार है, हमारे गांव वालों का, कि हम जमीन दे देंगे, हम आश्रम को जमीन देंगे, जितना भी पैसा आश्रम देगा हम ले लेंगे। ठीक है भाई। दादी कहती जाओ देख कर क्या, भाइयों को भेजा, यहाँ न रास्ता है न कुछ है, पगडंडी थी जिसमें लोग जाते थे, और जंगल था सारा, ये बबूल का इधर उधर के कांटे का जंगल, चरागाह की जमीन थी। देखा भाई लोगों ने कहा दादी जमीन तो ऐसी है, बड़ा उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियां हैं, ये है वो है। दादी कहती है जब बाबा कह रहा है, ये सामने से कह रहा है, तो ले लो। ले लिया 33 एकड़ 34 एकड़ सारी जमीन है। यह आंसर हो और की बनाने में बड़े विघ्न आए, पास ही नहीं हो। बाबा ने अपने बेटे को भेज दिया गवर्नर चन्ना रेड्डी को, उसने सारे कागज क्लियर कराए नीचे से ऊपर तक करके, फिर कहता है मैं ही फाउंडेशन डालने आ रहा हूं। अब गवर्नर फाउंडेशन डालने आएगा तो उसके लिए रोड तो चाहिए ना, रोड बनी, गाड़ियां आई, उसने कहा हम पक्की रोड के लिए इतना गवर्नर फंड में से इतना देना चाहते हैं, पक्की रोड बनानी पड़ी, फिर उद्घाटन करके फिर उसका ट्रांसफर हो गया। तो दादी जी के अंदर कोई भी संकल्प, जो हम कह रहे ना एक बाबा दूसरा न कोई, एक दृढ़ता का संकल्प उनसे सिद्धियां दिला रहा था। शांतिवन ऐसे ही बना, शांतिवन की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन प्रैक्टिकल साथ में रह करके मैंने देखा योग का बल, दृढ़ता के संकल्पों का बल, एक भरोसा, बस उसके आधार से आज इस संस्था का इतना सुंदर विस्तार हुआ है। बाबा तो करण करावनहार है ही, लेकिन बीच में जो ये निमित्त दादियां बनी, उनका जो बल था, उनकी जो तपस्या थी, उनका जो निश्चय था, उनकी जो दृढ़ता थी, आज हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर विस्तार हुआ है। दादी जी 2007 में गई, अव्यक्त हुई, उस समय मनमोहिनी वन बन रहा था, मीटिंग हुई और मीटिंग में दादी ने ऐसे ही कहा, भाई मनमोहिनी वन बन रहा है, 2004 या तीन की बात, चार की बात है, चार या पांच की मीटिंग में बोल दिया, कौन कितना सहयोग देगा लिख के दे देना। एक भाई ने लिख दिया 5 लाख देंगे, हम लोग बुलाए, कहता 5 लाख देंगे, जाओ इसके पास बात करो। सबके सहयोग से बाबा का कार्य होता है, सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया, मनमोहिनी वन बन गया, फिर आनंद सरोवर बना, फिर मानसरोवर। मानसरोवर क्यों बना, क्यों बना मालूम है? दादी को पानी से बहुत प्यार था, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और राजस्थान में पानी मिलना तो बहुत बड़ी बात है। बरसात नहीं पड़े तो दादी कहे, प्रभु का प्यारा पानी, पानी के लिए कुछ करो। भोपाल भाई को बार बार करे, पानी तो होना चाहिए ना, पानी के बिना सब सुन। राजस्थान में और 20,000 15,000 के भाई बहन अगर हम उनका व्यवस्था कर रहे हैं तो पानी तो चाहिए पहले। तुम्हारे भोपाल भाई इधर उधर चक्कर लगाते लगाते नदी पर पहुंच गए, नदी सूखी, पानी कुछ नहीं। रामानुसार उस नदी को 8 एकड़ जमीन को खरीद लिया, पीछे आगे नदी के चारों तरफ वहां बोरिंग करा दी, वहां से पानी शुरू हुआ। कहां से पानी आता है, कितने बाबा के बच्चे नहाते धोते रहते हैं, कुछ किसी को पता नहीं है। गुप्त गंगा बाबा ने दे दी, करण करावनहार बाबा है, निमित्त बच्चों को बनाता है। और दादियां इस क्षेत्र में कभी ये नहीं सोचती इतना खर्चा, इतना ये करना, सब मिलकर के बाबा का कार्य है, सब बच्चे मिलजुल करके करेंगे, हो जाएगा, बाबा बैठा है, असंभव कोई चीज है ही नहीं। तपस्या के लिए एक और अंदर की धारणा दादी जी की मैं आपको बताता हूं, आंतरिक बेहद का वैराग्य। ना उन्होंने कभी अपनी महिमा स्वीकार की, ना उन्होंने कोई वस्तु स्वीकार की। एक बार मैं गया दादी के पास, दादी को डॉक्टरों ने मना कर दिया था माउंट आबू में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ की हवा आपको सूट नहीं करती। शांतिवन में बिठा दिया और हम लोगों की ड्यूटी लगाई, रोज जाओ रोज आओ, अप डाउन करो। 3-4 भाइयों की ड्यूटी थी, हम रोज सुबह सुबह 9 बजे पहुंचते थे, सारा दिन सेवा करते थे और शाम को 7 बजे ऊपर आते थे। एक दिन मैं गया, दादी ऐसे आंख बंद करके बैठे, कहती थी सबसे पहले ऊपर से आना तो मेरे पास आना, बाद में सेवा पर जाना। ऐसे बैठी थी, हम गए, बहुत देर तक ऐसे आंख बंद करके बैठे थे, तो मैंने ऐसे हिलाया थोड़ा सा, मैं दादी बोला, बोलो बोलो तुम आ गए ऊपर से। मैं हाँ दादी ठीक है सब। एक एक का नाम लेके पूछना शुरू किया, ज्ञान सरोवर ठीक है, म्यूजियम ठीक है, पीस पार्क ठीक है। और हर बात में मैंने कहा, दादी वो कुछ क्यों बात, कोई बात हो भी तो क्या सुनाना। मैं दादी बहुत अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो अचानक पूछती, अच्छा सब ठीक है, कैसे ठीक है? अब कैसे का जवाब मैं कैसे दूं? तो हमने कहा, दादी आप बैठी हैं ना यहां पर, आपके जो शुभ संकल्प हैं, आपके जो पवित्र वाइब्रेशन है, आपका जो योग की सकास है, उसे सब बहुत अच्छा चलता है। जैसे ये शब्द निकले और दादी ने मुझे ऐसे देखा, क्या बोला? देखता रहा दादी, फिर से रिपीट किया मैंने, तो तेरे मुट्ठा दादी के संकल्प से चल रहा है, तुमको किसने कहा है? बाबा के संकल्प से चल रहा है, बाबा करण करावनहार है, उसको तुम भूल करके आत्मा को याद कर रहे हैं। मना अपनी महिमा भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मेरे योग से, मेरे संकल्प से सब हो रहा है, भूल नहीं करो। ये इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सारी कारोबार, करावनहार बाबा, और तुम आत्माओं की महिमा कर रहे हो, आज इतना बड़ा यज्ञ कैसे चल रहा है भाई? इतने हजारों बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, दादियां एडवांस में चली गई, बाबा का अव्यक्त पाठ भी पूरा हो गया, फिर भी सब इतना भरपूर होके जाते हैं, कौन करा रहा है, कहां से चल रहा है? अनुभव होता है आप लोगों को, नहीं होता है भाई? नए नए आते हो, जो नए आते हैं, करण करावनहार बाबा है ना, कितना गुप्त कार्य है, सूक्ष्म वतन में बैठ करके बाप दादा और संपूर्ण आत्माओं के शक्ति से इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है। भले वो कहीं भी जाएं, एडवांस पार्टी में शरीर लें, कुछ भी करें, लेकिन बाबा उनके अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करता है और उनसे सकाश दिलाता है, उनसे मदद कराता है। देश और विदेश में हजारों सेंटर्स, हजारों रिट्रीट सेंटर्स बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोविड में इतने बच्चे जन्म ले गए, जब सेवा नहीं हो रही थी उस समय सैकड़ों क्या हजारों बच्चों को ज्ञान मिल गया, जबकि बाबा का पाठ पूरा हो गया है। दादियां एडवांस पार्टी में चली गई, उसके बाद भी बाबा ने इतने बच्चों को जन्म दे दिया। आत्माएं दे रही हैं क्या? कौन दे रहा है? ये बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा करण करावनहार है। अंदर से दिल ही दिल में बाबा 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 ये शब्द हमारी दादियों ने पक्का किया, और मैं समझता हूं ये बाबा, मेरा बाबा, ये शब्द निकलना ही तपस्या है। और इसी तपस्या के बल से उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, तपस्या के बल से इतनी सिद्धियां प्राप्त की और अपने आप को बिल्कुल देह से न्यारा कर लिया। अंतिम दो पुरुषार्थ की बातें सुना के मैं पूरा करता हूं, दादी के पुरुषार्थ के। देखता था मैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। एक बार 2005 की लगभग बात है, 6 या 5 या 6 की बात है, दादी को तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो बिस्तर पर ही थी, लेकिन हम तीन भाई अचानक मिलने गए, गेट पर आवाज दिया, कोई था नहीं, दादी अकेले लेटी हुई थी, गेट पर खड़े होके आवाज दी, दादी चाचा आओ आओ आओ, दादी खड़ी हो बैठ गई चारपाई पर। और जब बैठ गई, जो हम तीन भाई थे, तीनों को अंदर देखा तो दादी खड़ी हो गई अचानक, और खड़ी होकर के ऐसे बाहें की और हम तीनों भाइयों को ऐसे अपनी बाहों में ले लिया, और इतनी देर तक हिलाती रही, प्यार करती रही, अच्छा बिल्कुल कर्मातीत स्टेज, कुछ भान नहीं है, हम भी सब भूल गए कि हम भाई ये बहन, इतना शरीरी स्थिति का अनुभव करा दिया, कर्मातीत। फिर बैठी, बैठाया सबको, ठीक है, सब ठीक है, संपन्नता की स्टेज, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई भी भान नहीं शरीर का, देह भान को गलाना ये तपस्या है, देह भान ही गलत कदम हो गया। एक दिन ऐसे बैठी थी, फिर मैं गया ऐसे अचानक, जाता था बीच बीच में देखने मिलने, आंख बंद कर लेती थी ऐसे, हिलाया, मैं क्या करें दादी, ऐसे प्यार से पूछा, दादी आप क्या कर रही थी, बताऊं बताऊं, दादी बताओ, ये जो आत्मा है ना, हीरा है ना, बाबा कहता हीरा, उस हीरे का दाग तो निकाला नहीं जाता, और निकालते हैं तो उसको काट देते हैं, उसको घिसाई करते हैं, और आत्मा में जो दाग लग गए वो कैसे निकलेगा? तो आज मैं बैठ करके अपने हीरे को देख रही थी, ऐसे हाथ किया, इसको हथेली पर रखा, और मैं चारों तरफ से देख रही थी, इसमें अभी भी कोई दाग तो नहीं है, किसी भी बुराई का, किसी भी संस्कार का, किसी भी कमजोरी का दाग देखने के लिए मैं ऐसे आंख बंद करके चारों तरफ से बहुत देर से देख रही थी, और सामने बाबा आए। बाबा कहते, बच्ची क्या देख रही हो? बाबा मैं हीरे को देख रही हूँ, अरे बच्ची ये हीरा बिल्कुल प्योर बन गया है, शुद्ध बन गया है, इसमें कोई दाग नहीं है। इतना गहरा पुरुषार्थ, यही तपस्या है। और ऐसे बेदाग हीरा बन करके आत्मा उड़ गई, कर्मातीत बन गई। हम सभी बाबा के बच्चे तपस्या के बल से स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाए। बातें हैं, बातें होंगी, विस्तार हो रहा है, किसी भी बातों के चक्कर में नहीं जाना। ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये वो बोलता, वो बोलता, जो बोलता है अपना हिसाब बनाता है, मुझे कुछ नहीं देखना है। अगर एक बाबा को देखेंगे तो मंजिल को प्राप्त करेंगे, और किसी देहधारी को देख लिया तो भटक जाएंगे। तो मंजिल को पाना है ना, कौन सी मंजिल है? संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। और बनना है तो सीधा देखना, साइड को नहीं देखना। साइड को देखे तो भटक जाओगे, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो बाबा को देखते चलो, अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाओ, एक ही लगन में मगन रहो। ऐसी तपस्या दादियों ने की है और हमें फॉलो करना है। ओके, ओम शांति।